So being a family member, I would like to ask everyone, how is everyone? कैसे हैं आप लोग? मैं भी बहुत अच्छा हूँ, यहाँ पर आके और अच्छा हो जाता हूँ. तो ये जो प्रेजेंटेशन है आज का, जो पिछले तीन साल चार साल से जो हम काम कर रहे हैं राजयोग मेडिटेशन पर, डीआरडीओ का एक लैब है इनमास, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेज दिल्ली में, वहां पर डिपार्टमेंट ऑफ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में श्रीमान सुशील भाई जी हैं जो एचओडी हैं, उनके साथ ही मैं काम कर रहा हूं. और राजयोगा के स्टेट्स के साथ राजयोगा का अटेंशन नेटवर्क्स पे क्या इफेक्ट होता है उसके बारे में कुछ रिसर्च है मेरी, उसके बारे में कुछ ब्रीफ आपको देना चाहूंगा. तो कंटेंट जो मेरी प्रेजेंटेशन का रहेगा, ये कुछ ऑब्जेक्टिव हमारी स्टडी के क्या क्या ऑब्जेक्टिव रहते हैं, क्या क्या ऑब्जेक्टिव पे हम लोग काम कर रहे हैं, और टूल्स एंड टेक्निक्स जो हम यूज कर रहे हैं, क्या क्या इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं, क्या क्या स्टडीज हुई हैं डीआरडीओ में अब तक, देन अप्रोच एनालिसिस करने के लिए जो डेटा हमें मिलता है, जो जिसमें बहुत समय लगता है. कई लोगों की शिकायत है कि उनका डेटा, उनके रिजल्ट्स उनको नहीं मिल पाते, तो उसके लिए क्या क्या चीजें हम करते हैं, क्या अप्रोच रहते हैं एनालिसिस के, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. पब्लिकेशंस और पोस्टर्स, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव हमारा है यही है कि बाबा के ज्ञान को साइंटिफिक वर्ल्ड में साइंटिफिक मेथड से किस तरह से एस्टेब्लिश करा जाए, वो एक कार्य रहता है. तो पब्लिकेशंस और पोस्टर करके आम जनमानस के द्वारा, आम जनमानस को इसके बारे में जानकारी देना, ये एक विषय रहता है. और कई लोगों के मन में ऐसे विचार आते हैं कि हम भी क्या कुछ इस पे काम कर सकते हैं, मेडिटेशन पर, राजयोगा पर, राजयोगा के अलग अलग स्थिति पर किस तरह से अलग तरीके से लोग काम कर सकते हैं, सोशल साइंस से लेके फिजिकल साइंस तक, मेडिसिन से लेके साइकोलॉजी तक, सब लोग जिस पे काम कर सकते हैं. कुछ कुछ आइडियाज मैं इसमें प्रेजेंट करना चाहूंगा. तो ऑब्जेक्टिव जो हमारे स्टडी के रहे थे, मेन ऑब्जेक्टिव रहे थे, टू फाइंड ब्रेन रीजन्स इन्वॉल्व विद राजयोगा मेडिटेशन. कौन कौन से ब्रेन रीजन्स हैं, ब्रेन में कौन कौन से पार्ट्स हैं जो कि राजयोगा करते समय एक्टिव रहते हैं. किसी भी तरह का राजयोगा आप करते हैं, शांति स्वरूप स्थिति में करते हैं, या एंजेलिक स्टेट में करते हैं, या किसी भी और शक्ति स्वरूप स्थिति में करते हैं. दूसरा, जो ब्रेन एक्टिविटीज में चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग मेडिटेशन, उनको ट्रैक करना विद द हेल्प ऑफ फिजियोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे कि हम लेंगे ईईजी या एमआरआई. थर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ आर रिसर्च वाज द कंफर्मेशन ऑफ डिफरेंट स्टेट ऑफ राजयोगा, ताकि हम अपने राजयोगा की स्टेट्स को कंफर्म कर पाएं और बता पाएं कि इस राजयोग स्टेट में इस तरह से मस्तिष्क में परिवर्तन होते हैं, पीसफुल स्टेट में, या सोलफुल पावरफुल सोल में, या फिर एंजेलिक स्टेट में. और बाबा के ज्ञान को अभी तक जो भी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट बने हैं उनके द्वारा मेजर करना. कुछ टूल्स हैं जिसपे काम करते हैं हम, जैसे साइकोलॉजिकल टूल्स हैं जिसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कई सारे क्वेश्चंस दिए जाते हैं, और क्वेश्चंस के बाद आपको उन क्वेश्चंस को भरना होता है अपने ज्ञान के अनुरूप. कुछ पेपर बेस्ड टेस्ट होते हैं जिसमें आपको कुछ परफॉर्म करना होता है, आपको बोला जाता है कि एक सीमित समय में आपको किसी चीज को परफॉर्म करना है, तो ये पेपर पेन बेस्ड टेस्ट होते हैं. तीसरे होते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसमें आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ परफॉर्म करना होता है, 10 से 20 मिनट के ये टेस्ट होते हैं, जिसमें कुछ कुछ चीजें आपको कई बार अलग तरह का एक कीबोर्ड, जैसे कि इसमें दिख भी रहा है, उस तरह का कीबोर्ड देके आपसे कुछ टेस्ट करवाए जाते हैं, जिससे आपकी मानसिक स्थिति का पता लगता है और कितना आप सजग हैं वातावरण के प्रति या अपनी स्वयं की स्थिति के प्रति, वो भी पता लगता है. दूसरी जो चीजें हैं जो हमारे बिहेवियर में ना आकर हमारी फिजियोलॉजिकल स्टेट में आती है, तो उनके लिए हम जज करते हैं फिजियोलॉजिकल टूल्स को यूज करते हैं. पहला है ईईजी, जो आप ये देख रहे हैं, एक माइंडफुलनेस मेडिटेशन करते हुए एक साधक हैं जिनके ऊपर ये एक हाई डेंसिटी 128 चैनल ईईजी लगा हुआ है. दूसरा ये स्टेट जीएसआर का है, जो दो उंगलियों में आप देख रहे हैं, इन दो उंगलियों पर लगा हुआ है. जीएसआर हमारे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम का इंट्रैक्शन दर्शाता है. तीसरा एफएमआरआई, एफएनआईआर और इस तरह की मशीन में सब्जेक्ट्स को लिटाकर उनकी मानसिक स्थिति का पता करना. ईईजी, जैसा कई बार मैं भी पिछले एक दो बार बता चुका हूं और कई लोग और भी बताते हैं, ईईजी एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का रिकॉर्डिंग है, जो कि सर के ऊपर से स्कैल्प से किया जाता है. जो ब्रेन एक्टिविटी है उसको मेजरली हम पांच अलग अलग तरंगों में डिवाइड करते हैं। डेल्टा से शुरू होता है, 0.5 से 3 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी होता है, देन थीटा आता है, फिर उसके बाद अल्फा, बीटा और गामा। तो इस तरह से इनका चक्र चलता है। हम कोई भी कार्य करते हैं या नहीं भी करते हैं तो भी ब्रेन से ये तरंगें निकलती हैं, और उन तरंगों को मेजर करने के लिए हम ईईजी को यूज करते हैं। अब जो रिसर्च जिस पर मैं काम कर रहा हूं, अटेंशन प्रोफाइलिंग इन लॉन्ग टर्म राजयोगा मेडिटेटर्स, इसके बारे में कुछ बताना चाहूंगा। अटेंशन का सिग्निफिकेंस क्या है? सबसे पहले तो हम ये जाने कि अटेंशन क्या होता है। तो अटेंशन एक चलने के प्रकार है जिसके कि जब हमारे पास पांचों सेंसेशंस हैं, देखने के लिए आंखें, सुनने के लिए कान, सूंघने के लिए नाक, स्वाद लेने के लिए जिह्वा, और हर तरह का टैक्टाइल सेंसेशन के लिए पूरा स्किन बॉडी पर, हर जगह पूरी स्किन पर रोम छिद्र हैं जिससे हम चीजों को सेंसेशन करते हैं, चाहे वो टेम्परेचर हो, पेन हो, प्रेशर हो, हवा का दबाव हो, किसी भी तरह की चीज को हम प्रेशर को सेंस कर पाते हैं। जब हम इतनी सारी चीजों को सेंस करते हैं तो, क्योंकि एक चीज तो पता होगा आपको, जो हमारा दिमाग है, जो मस्तिष्क है, वो एक कंप्यूटर की भांति कार्य करता है। तो कंप्यूटर की भांति कार्य करने में जब इतनी सारी चीजें मेमोरी में जाएंगी तो उन मेमोरी में जाती हुई चीजों को स्टोर करना इटसेल्फ इज अ बिग चैलेंज। तो उस स्टोर करने की हमें जरूरत ना पड़े, उसमें से हम जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, उन सारी चीजों को हम ग्रैब कर सकें, इसके लिए अटेंशन का एक नेटवर्क काम करता है। तो अटेंशन का जो चलनी है, उस अटेंशन की चलनी से होकर इन सारी ये जितने सेंसेशंस हैं, उन सारी सेंसेशंस से जो जरूरी बातें होती हैं वो हमारे मस्तिष्क तक पहुंचे, इसके लिए अटेंशन काम करता है। ये ज्ञान सरोवर की साइकोफिजियोलॉजी लैब जो बहुत अच्छी है, आप लोग एक बार जाइएगा, सब लोग देखेगा जरूर। साउंड प्रूफ कमरे बने हैं वहां पर, और बाकी तापमान को कम ज्यादा करने की सुविधा उपलब्ध है वहां पर एसी के द्वारा। तो वहां पर हमने अभी जनवरी में रिकॉर्डिंग किया था, और उससे पहले भी कई बार रिकॉर्डिंग किया था, कई बार शांतिवन में ही, कई बार ज्ञान सरोवर में भी। कुछ कंबाइंड रिजल्ट्स हैं तो एक ब्रीफ में आपको बताऊंगा। अब ये जो हमने डेटा रिकॉर्ड किया है 64 चैनल ईईजी का, 64 चैनल ईईजी का मतलब जो कैप हमने पहनाई उसमें 64 पॉइंट्स थे जहां से हमें डेटा रिकॉर्ड किया। तो 64 पॉइंट्स से डेटा रिकॉर्ड करना, और पिछली बार जब हमने 14 चैनल से डेटा रिकॉर्ड किया था तो एक बहुत अंतर इसमें आया कि 14 चैनल से रिकॉर्ड किया डेटा बहुत छोटा था, और 64 चैनल से रिकॉर्ड किया डेटा बहुत बड़ा था। तो उस डेटा को प्रोसेस करने में क्या क्या अप्रोचेस लगी, क्या क्या चीजें हम लोग काम करने की कोशिश किए और किस किस चीजों पे काम किया, वो ये थी। पहला जो था क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, अल्फा, बीटा, डेल्टा, थीटा, गामा, इसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं ब्रेन में, इनकी इनकी प्रॉपर्टीज में क्या चेंजेस होते हैं, किस तरह से ये तरंगे हमारे मस्तिष्क में परिवर्तित होती हैं जिस समय हम ध्यान में रहते हैं, या ध्यान से आने के बाद का जो स्टेट है उसमें क्या चेंजेस होते हैं। दूसरा है लॉरेटा विजुअलाइजेशन। लॉरेटा विजुअलाइजेशन जो होता है, जब ईईजी डेटा को हम सोर्स लोकलाइजेशन, माने कि किस पार्ट में एक्टिवेशन हुआ है ब्रेन में, उसको पता करने के लिए जब देखते हैं तो लॉरेटा विजुअलाइजेशन हम करते हैं। तीसरा जो हमने नया अप्रोच शुरू करा है, दैट इज नेटवर्क्स इन ब्रेन। एक ग्राफ थ्योरी करके मैथमेटिकल एक फंक्शन होता है, मैथमेटिक्स की एक थ्योरी होती है ग्राफ थ्योरी, उस ग्राफ थ्योरी को अप्लाई करके ब्रेन के विभिन्न भागों में, डिफरेंट पार्ट्स में अलग अलग नेटवर्क्स जो बनते हैं, क्योंकि सब जगह कनेक्शंस होते हैं, और ऐसा माना जाता है कि जितने ज्यादा अच्छे कनेक्शंस होंगे, जितना ज्यादा नंबर ऑफ कनेक्शंस होंगे और जितना स्ट्रेंथनिंग ऑफ कनेक्शंस होंगी, उतना ज्यादा मस्तिष्क हमारा अच्छे से काम करेगा। तो इन तीनों चीजों पर अप्रोच लेते हुए पहला अप्रोच जो था हमारा क्वांटिटेटिव अप्रोच, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, उसके हमारे जो रिजल्ट थे, पहला रिजल्ट था अल्फा एनर्जी इंक्रीज हुई है फ्रंटल चैनल्स पे, माने कि मस्तिष्क के आगे के भागों में, जो कि ये दर्शाता है कि जो व्यक्ति थे जो जिस समय मेडिटेशन कर रहे थे राजयोगा मेडिटेशन, उस समय रिलैक्स थे और पीसफुल माइंड में थे। थीटा एनर्जी भी इंक्रीज हुई ड्यूरेशन ड्यूरिंग एंड आफ्टर मेडिटेशन, which also indicates the state of meditation। ऐसा माना जाता है, पिछली बार पिछले जितने कई बार 3,500 के करीब जो पेपर पब्लिश हुए हैं रिसर्च के, उसमें कई सारे पेपर्स में ऐसा माना गया है कि थीटा का जो रोल है मेडिटेशन में सबसे ज्यादा रहता है, और एक आंतरिक शांति की अनुभूति वाली जो स्थिति होती है उस स्थिति में थीटा बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है। तो थीटा हम भी हमें बहुत प्रचुर मात्रा में मिला। तीसरा, थीटा कोहेरेंस वाज आल्सो फाउंड इन फ्यू मेडिटेटर व्हिच इज आल्सो अ कंफर्मेटरी ऑफ मेडिटेटिव स्टेट, और अल्फा कोहेरेंस भी हमें मिली जो कि न्यूरोप्लास्टिसिटी और हार्मनी इन माइंड ऐसा माना जाता है कि इसमें मिलता है। जो टेस्ट हमने साइकोलॉजिकल टेस्ट करा था, 10 मिनट का ये टेस्ट था, उस टेस्ट में आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर परफॉर्म करना था। जिन जिन भाइयों या बहनों ने वो टेस्ट दिया था उनको पता है, उसमें दो टेस्ट हमने लिए थे। एक था सीपीटी, सीपीटी नाम से जो टेस्ट था उसका पूरा नाम था कंटिन्यूस परफॉर्मेंस टेस्ट। इस जो कंटिन्यूस परफॉर्मेंस टेस्ट था इसमें आपको करीब 16 से 17 मिनट स्क्रीन पर बैठना था और किसी एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करके जहां पर आपको रिस्पॉन्स करना था उस समय क्विक रिस्पॉन्स देना था। तो इसमें जो हमारे रिजल्ट मिले हैं उसमें डिक्रीज्ड एरर्स मिले हैं मेडिटेटर्स में, जो कि बहुत अच्छी बात है, और इंक्रीज अटेम्प्ट मिले हैं। लोगों ने जितने राजयोग करने के बाद जो अटेम्प्ट किए हैं वो ज्यादा थे, नंबर ऑफ अटेम्प्ट ज्यादा थे, और उनके जो एरर्स थे अलग अलग तरह के, दो तरह के एरर थे, वो कम थे। और यही चीज अटेंशन नेटवर्क टेस्ट में भी मिली। अटेंशन नेटवर्क में जो तीन नेटवर्क होते हैं, अलर्टनेस, ओरिएंटेशन और एग्जीक्यूटिव। अलर्टनेस माने कि मेरी अवेयर स्टेट, अवेयर टू माय इनसाइड, अवेयर टू माय आउटसाइड, दैट मींस द एनवायरमेंटल थिंग। तो एनवायरमेंट के लिए मैं कितना सजग था उसके लिए अलर्टनेस वाली स्टेट में भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिले। और एग्जीक्यूटिव अटेंशन जहां निर्णय लेने की क्षमता आती है वो भी लॉन्ग टर्म मेडिटेटर्स में एक बहुत अच्छा रिजल्ट पाए गए। तो इस तरह के रिजल्ट से एरर्स कम पाए गए लॉन्ग टर्म मेडिटेटर्स में। यहां पर दो क्लास है, लॉन्ग टर्म मेडिटेटर्स और कंट्रोल। कंट्रोल सब्जेक्ट्स उनको मानते हैं जिन्होंने कभी भी राजयोगा मेडिटेशन या किसी प्रकार का मेडिटेशन ध्यान नहीं किया है। तो जो करेक्ट नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेस थे वो लॉन्ग टर्म मेडिटेटर्स में यानी कि राजयोग मेडिटेटर्स में ज्यादा थे और कंट्रोल में कम थे। जो करेक्ट नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज का रिएक्शन टाइम था, माने कि जितनी बार आपने सही उत्तर दिया है उसमें आपका रिएक्शन टाइम कम से कम हो सके, जो कि हमने ये माना था, हमने इंस्ट्रक्शन दिए थे कि कम से कम आपको जल्दी से जल्दी ये समय कंप्लीट करना है। तो लॉन्ग टर्म मेडिटेटर्स का जो समय था वो कंट्रोल से कंपेयर में बहुत कम था। और जो एरर्स थे यहां पर दिख रहे हैं, लॉन्ग टर्म मेडिटेटर्स के एरर कंट्रोल के एरर से दोनों ही एरर बहुत कम थे। 14 चैनल के रिजल्ट्स में जो हमें मिला वो हमें सुपीरियर टेम्पोरल गायरस, इंफीरियर पैराइटल लोब्यूल और क्यूनियस ऑक्सिपिटल लोब, ये तीन अलग अलग रीजन थे जो हमें बहुत अच्छे तरीके से एक्टिवेटेड मिले थ्रू आउट द मेडिटेशन। और तीनों का ही अपना एक रोल है। फीलिंग ऑफ जॉय, सुपीरियर टेम्पोरल गायरस का रोल जो है, जब आप खुशी महसूस करते हैं उस समय इसका एक्टिवेशन होता है। दूसरा, इंफीरियर पैराइटल लोब्यूल जो कि सेल्फ अवेयरनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसका भी एक्टिवेशन उस समय रहा। और क्यूनियस जो कि स्टेट ऑफ हैप्पीनेस दोबारा के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, उसका भी बहुत अच्छे से एक्टिवेशन रहा। तो जब हम ईईजी करते हैं तो ईईजी के बाद ये जो रिजल्ट्स मैंने दिखाया आपको, ये सारे लोरेटा के द्वारा ब्रेन विजुलाइजेशन के रिजल्ट हैं। ब्रेन को हम विजुलाइज कर सकते हैं लोरेटा के द्वारा कि ईईजी से क्या क्या चेंजेस हुए ब्रेन में, माने कि मेडिटेशन से क्या क्या चेंजेस हुए उसको ईईजी के द्वारा हमने एसेस किया। कुछ और जैसे सुपीरियर टेम्पोरल गायरस टेम्पोरल लोब में और ऑक्यूनियस ऑक्सिपिटल लोब स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, माने कि पोस्ट मेडिटेशन में भी, ये रिजल्ट पोस्ट मेडिटेशन के हैं, यानी कि जब आप मेडिटेशन कर चुके हैं उसके बाद भी आपकी अवस्था बहुत अच्छी है और उस अवस्था में राजयोगी बने रहते हैं, तो इस अवस्था में भी हमें खुशी का अनुभव हो और हो सके ऐसा हम करते हैं, कोशिश प्रयास करते हैं, शायद प्रयास भी करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये बस अपने आप ही होता है। तो इस तरह के रिजल्ट्स भी हमें मिले। तो अगर समराइज करके बताऊंगा इन सारे रिजल्ट्स को, तो कुछ कुछ अलग अलग रीजन्स में रिजल्ट्स मिले जो कि रिस्पॉन्सिबल थे सेल्फ अवेयरनेस के लिए। कोऑर्डिनेशन विद एक्शन ऑफ सेंसरी सिस्टम, माने कि आपको अपने आप जो भी क्रिया प्रतिक्रिया देते हैं एनवायरमेंट के लिए या फिर बाकी और लोगों के लिए, उस पर आपका नियंत्रण है, कोऑर्डिनेट आप ठीक से कर पाते हैं। इमोशन फॉर्मेशन और प्रोसेसिंग के लिए जो भी आपके भाव बनते हैं उन भावों को संयमित रखना, उनके लिए जो जो पार्ट्स रिस्पॉन्सिबल है वो भी एक्टिवेटेड थे, लर्निंग मेमोरी और एग्जीक्यूटिव फंक्शन के लिए भी जो पार्ट्स ब्रेन में एक्टिवेटेड थे ड्यूरिंग मेडिटेशन, उनको भी ऐसा सिग्निफिकेंस पाया गया। दूसरा चीज जो मैंने बताया था, ब्रेन नेटवर्क्स बाय ग्राफ थ्योरी। तो ग्राफ थ्योरी का जो हम उपयोग करते हैं, ये कई जगह हम उपयोग करते हैं मेडिटेशन के अलावा। जैसे पहला जो इसका था, टू अंडरस्टैंड ब्रेन मैकेनिज्म ऑफ एंड इट्स रीजन हाउ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन कैन कंट्रीब्यूट एंड कंट्रोल आवर कंप्लीट बॉडी मैकेनिज्म। तो सबसे पहले तो ये पता करना कि अलग अलग ब्रेन पार्ट्स जो हैं वो हमारी बॉडी के मूवमेंट से लेके हमारे सोचने तक, सोचने की क्षमता तक कहां कहां प्रभाव डालते हैं, वो एक उस चीज को पता करना। दूसरा, टू अंडरस्टैंड पर्टिकुलर इफेक्ट ऑफ एनी मेडिकेशन और थेरेपीज कंडक्टेड टू क्योर ब्रेन इन सेवरल डिसीज। अलग अलग न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस के लिए या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के लिए अगर कोई दवा देते हैं तो उन थेरेपीज को असेस करना कि वो थेरेपीज ब्रेन पर कितना इफेक्ट डाल रही है, और उन सारी चीजों को लेके उन सारे नेटवर्क जो भी हमें ब्रेन में एक्टिवेट मिलते हैं उसके द्वारा पता करना कि क्या इनका एक्शन सही है या नहीं, और ब्रेन फंक्शंस को विजुलाइज करना अलग अलग डिसऑर्डर्स को कैटेगराइज करने के लिए। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो था नेटवर्क्स का वो इस तरह से होता है। सबसे पहले ये जो ए बी सी डी ई पांच बिंदु जो देख रहे हैं, सबसे पहले अनडायरेक्टेड नेटवर्क्स में ए बी सी डी ई जब अनडायरेक्टेड नेटवर्क्स होते हैं, तीन तरह से इनको रिप्रेजेंट करते हैं हम ग्राफ्स को। पहला होता है अनडायरेक्टेड ग्राफ। अनडायरेक्टेड ग्राफ में कोई भी एक पार्ट दूसरे पार्ट से जब कनेक्टेड रहता है तो उसको हम बोलते हैं अनडायरेक्टेड नेटवर्क। जब कोई भी एक पार्ट दूसरे पार्ट से कनेक्टेड रहता है, जब हम वेक्टर थ्योरी की बात करते हैं तो किसी एक डायरेक्शनल अप्रोच में अगर वो कनेक्टेड रहता है, जैसे ए ई से कनेक्टेड है, ए डी से कनेक्टेड है, ई डी से कनेक्टेड है, डी बी से कनेक्टेड है, तो उन नेटवर्क्स को हम बोलते हैं डायरेक्टेड नेटवर्क। और तीसरा जो होता है वेटेड नेटवर्क्स, कितना कनेक्टेड है, किस हद तक कनेक्टेड है, उसको हम बोलते हैं वेटेड नेटवर्क्स। तो अगर हम सिंपल और सरल भाषा में अगर इनको बताएं तो अनडायरेक्टेड नेटवर्क्स वो ब्रेन पार्ट्स होते हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। कितना वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, कितना प्रभावित करते हैं, वो डायरेक्टेड नेटवर्क्स होते हैं। और कैसे प्रभावित करते हैं, कितना प्रभावित करते हैं, किस हद तक प्रभावित करते हैं, वो वेटेड नेटवर्क्स होते हैं। तो ब्रेन कनेक्टिविटी और फंक्शनल कनेक्टिविटी में कुछ कुछ चीजों में और भी हमने रिजल्ट निकाले। ये रिजल्ट थे प्री और पोस्ट मेडिटेशन के, मेडिटेशन से पहले और बाद के रिजल्ट्स। इसमें एक चीज मैं बताना चाहूंगा, अल्फा वेव्स का ईईजी स्पेक्ट्रम लेके हमने इसको स्टडी करा और ये देखा कि जो ब्रेन की कनेक्टिविटी है प्री मेडिटेशन से पोस्ट मेडिटेशन में बहुत तेजी से बढ़ी है। ये देखिए, अलग अलग ब्रेन रीजन्स में बहुत सारे नेटवर्क्स बने हैं। जैसे प्री में आपके बहुत कम नेटवर्क्स थे, पर पोस्ट में आके बहुत सारे नेटवर्क्स बन गए हैं, हर तरह से ये कनेक्टेड है। तो माने कि एक तरह से ये माना जाता है, जब हमारे ब्रेन के सारे पार्ट्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन पहुंचा पा रहे हैं, अगर ऐसा होता है तो हमारा ब्रेन एक हेल्दी स्टेट में काम करता है। सेम रिजल्ट हमें थीटा के नेटवर्क्स में भी मिले, जहां पे नेटवर्क्स हमें हाई मिले। क्वांटिटेटिव अप्रोच में जब हम बात करते हैं ग्राफ थ्योरी में, तो हम तीन चीजों की बात करते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक पाथ लेंथ, क्लस्टरिंग कोफिशियंट और ग्लोबल एफिशिएंसी। जो कैरेक्टरिस्टिक पाथ लेंथ होता है, इसकी परिभाषा जैसे दी है, जरूरी नहीं है बताना, जो इसके रिजल्ट्स निकले इस तरह के रिजल्ट से, बेस लाइन से अगर हम ड्यूरिंग मेडिटेशन में हमने लोकल एफिशियंसी और ग्लोबल एफिशियंसी को देखा, तो लॉन्ग टर्म मेडिटेटर्स में एफिशियंसी बहुत अच्छे रूप से हमें बढ़ी हुई मिले, ग्लोबल भी और लोकल भी। और जब हम क्लस्टरिंग कोफिशिएंट की बात करते हैं तो ये भी लॉन्ग टर्म मेडिटेटर्स में बहुत बढ़ा हुआ मिला, और पाथ लेंथ बेसलाइन में ये हमें कम मिली। ये कम होना अच्छा है, माने कि एक टर्म होता है, एक शब्द हम यूज करते हैं ग्राफ थ्योरी एनालिसिस में, स्मॉल वर्ल्ड नेटवर्क। हम खुद भी बोलते हैं कि जितना ज्यादा कम्युनिकेशन की थ्योरीज में हम बोलते हैं, जितना ज्यादा हम आसपास होंगे, जितना ज्यादा एक दूसरे से जान पहचान होगी, उतना ज्यादा अच्छा कम्युनिकेशन होगा, उतना ज्यादा अच्छा संचार होगा एक दूसरे में, हम अपनी बातों को ज्यादा पहुंचा सकते हैं। मैं अभी माइक के द्वारा आप सब लोगों से बात कर सकता हूं, तो क्योंकि मैं आपसे कनेक्टेड हूं, अगर मैं माइक हटा दूं या बंद कर दूं तो मेरी आवाज शायद पीछे तक नहीं पहुंचेगी। तो इसीलिए पाथ लेंथ कम हो, अगर मेरे पास माइक नहीं है तो मुझे जरूरी है कि मेरे सबसे आगे वाले, सबसे पीछे वाले लोग हैं वो सबसे आगे आए और तब मैं उनको वो बात बता पाऊं। तो दो चीजों का इसमें मिला, पहला जो नेटवर्क की एफिशिएंसी थी वो नेटवर्क की एफिशिएंसी बहुत अच्छी थी कंपैरिजन टू कंट्रोल जिन्होंने मेडिटेशन नहीं किया था, और पाथ लेंथ जो था वो भी कम था। तो एक स्मॉल वर्ल्ड नेटवर्क की जो अनुभूति होती है, जिसको हम, जैसे मैंने अभी आपको डिस्क्राइब करा, जिसमें कम्युनिकेशन अच्छे से हो सकता है, ब्रेन में इस तरह के नेटवर्क पाए गए। ये कुछ ब्रेन मैप्स हैं जिसको 64 चैनल्स से करने के बाद हमने देखा, अभी तक ये जो रिजल्ट्स आपको मैंने दिखाए थे ये 14 चैनल के रिजल्ट थे, और ये वाले जो रिजल्ट्स हैं ये 64 चैनल के रिजल्ट्स हैं। 64 चैनल के रिजल्ट्स में भी आप देख सकते हैं कि जो ये कलर स्केल एक है, इस कलर स्केल को हम लेके चलते हैं, ये ब्लू से शुरू होता है और रेड तक जाता है, रेड माने कि हाईएस्ट एफिशिएंसी ऑफ नेटवर्क। तो जो कंट्रोल में आप, हम स्टडी कर रहे हैं कंट्रोल में, आपने देखा अलग अलग तरह के रंग के नेटवर्क्स मिल रहे हैं, अलग अलग तरह की कनेक्टिविटी और डिफरेंशियल एक्टिविटीज इसमें पाई गई है। दूसरा जो लॉन्ग टर्म मेडिटेटर्स में हमने देखा, लॉन्ग टर्म मेडिटेटर्स की एक्टिविटी में बहुत ज्यादा कनेक्टेड नेटवर्क्स पाए गए, बहुत हद तक ये जितना बिल्कुल एक्सट्रीम लाल रंग देख रहे हैं इसमें, ये पूरा कनेक्टेड नेटवर्क्स हैं, बहुत अच्छे से सारे नेटवर्क्स कनेक्टेड हैं और इनका एफिशिएंसी भी बहुत हाई मिला है। ये उसी का एक टोपोग्राफिकल पिक्चर जिसमें हमने बताया लॉन्ग टर्म राजयोग मेडिटेटर्स में ये एक तरह से डेंस नेटवर्क हमें मिले हैं, बहुत डेंस नेटवर्क, कंट्रोल में उतने डेंस नहीं है। तो ये स्थिति भी एक चीज दर्शाती है कि राजयोगी जब एक स्टेट, क्योंकि हमने जो भी राजयोगी लिए थे वो 10 वर्ष से कम के अनुभव के नहीं थे, कम से कम 10 वर्ष अनुभव के थे, तो 10 वर्ष से अगर कोई ज्ञान में है तो उनके ब्रेन नेटवर्क अपने आप में इतने सजग और इतने सुचारू रूप से चलने वाले होते हैं कि आप अलग तरह की परिस्थितियों में अपने को शांत रख सकते हैं और अपने को सजग रख सकते हैं। आइडेंटिटी ईजी जो हमने इस बार रिकॉर्डिंग करा था उसका एक पिक्चर है, इस तरह का एक कैप होता है, उस कैप में 64 चैनल्स होते हैं और इन 64 चैनल से हम डेटा रिकॉर्ड करते हैं। अलग अलग चैनल्स अलग अलग जगह पर रीजन पर एक्टिवेटेड रहते हैं। मेरे मस्तिष्क के आगे के भाग को जो फ्रंटल चैनल्स बोलते हैं, यहाँ पर फ्रंटल चैनल्स एक्टिवेट रहते हैं इसके पीछे, और अलग अलग जगह पर यहाँ पर टेम्पोरल चैनल्स एक्टिवेट रहते हैं, और मेरे बिल्कुल पीछे जहां से मैं देखता हूं तो मेरे विजन का जो भी सिग्नल्स हैं वो मेरे ऑक्सीपिटल लोब में पहुंचते हैं। तो ये पीछे का रीजन जो है ये ऑक्सीपिटल लोब होता है। तो 64 चैनल्स को हम यूज करते हैं इस ईजी डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए, और कई सारे राजयोगी जो कि सेवा में थे वहां पर, उन लोगों ने योगदान किया। जो आयु वर्ग इसमें रखा गया, हमने सीमित रखा गया 30 से 50 वर्ष के लोगों का, और सोर्स लोकलाइजेशन को प्रोसेस किया। सोर्स लोकलाइजेशन फिर से मैं बताना चाहूंगा, सोर्स लोकलाइजेशन का जब हम बात करते हैं तो सोर्स लोकलाइजेशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण टेक्निक और सबसे एफिशिएंट टेक्निक होती है fMRI, फंक्शनल MRI। फंक्शनल MRI में हम मैग्नेटिक फील्ड में हमारे ब्रेन के अलग पार्ट्स को अलाइन करके देखते हैं कि कौन से पार्ट का एक्टिवेशन में सबसे ज्यादा ग्लूकोज कंजम्पशन हो रहा है या सबसे ज्यादा एक्टिविटी हो रही है। पर सोर्स लोकलाइजेशन को हम यहां पर रिप्रोड्यूस करने की कोशिश की ईजी डेटा में, क्योंकि ये ईजी डेटा भी हाई डेंसिटी डेटा था, और इस हाई डेंसिटी डेटा में हमने कोशिश की कि हम उस तरह से, जिस तरह fMRI में हम कंक्लूड करते हैं, उस तरह के रिजल्ट्स हम दे पाए। और कुछ हमें अलग अलग रीजन हाईली एक्टिवेटेड मिले, जो पिछले कई और पेपर से, पुराने पेपर से हमें मैच करते हुए पाए गए। ये कुछ रीजन थे, मिडल फ्रंटल गायरस, इन्फीरियर टेम्पोरल एरिया जो आपने अभी मैंने पहले भी बताया था, फ्यूजीफॉर्म गायरस, ट्रांसवर्स टेम्पोरल गायरस, प्रीसेंट्रल गायरस, इंसुला एंड क्यूनियस, और पैराहिम्पोकैम्पल एरिया। ये अलग अलग ब्रेन पार्ट्स हैं जो अलग अलग चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कोई भी एक ब्रेन पार्ट केवल एक चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, कई अलग अलग चीजों के लिए, कई अलग अलग फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कोई आपके हैप्पीनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कोई आपके पीस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कोई केवल मोटर फंक्शन के लिए आपको कमांड देने का काम करता है, कोई केवल सेंसेशंस लेने का काम करता है, जो भी अलग अलग भांति भांति के जो सेंसेशंस हैं उनको लेने का काम करता है, कोई केवल इस तरह का काम करता है कि अगर किसी ने आपसे कोई बात कही है तो उस बात को किस तरह से लेना है, इमोशंस किस तरह के आपके ब्रेन में आए, उन इमोशंस को रेगुलेट करने के लिए भी अलग रीजन्स हैं और इमोशंस को प्रदर्शित करने के लिए भी अलग रीजन्स हैं। तो ब्रेन बहुत सोफिस्टिकेटली क्लासिफाइड होकर काम करता है अलग अलग चीजों पर, अलग अलग फंक्शंस के लिए अलग अलग रीजन्स को डेडिकेट किया गया है। तो इनका जो ये जो रीजन्स हमें मिले, इन सारे रीजन्स का पहले से अलग अलग पेपर्स में उल्लेख था और देख के मुझे कोई हैरानी नहीं हुई, बहुत अच्छा था ये रिजल्ट्स। और इसके क्या क्या इन रीजन्स का महत्व है वो मैं आगे बताऊंगा आपको। ये फिर से हमने जो 64 चैनल का लोरेटा की हेल्प से विजुलाइजेशन किया, इसमें कुछ कुछ चीजें हमें मिली और अल्फा और रेस्ट थीटा में हमने कंपेयर करा। ये दो अवस्थाओं में हमने कंपैरिजन करा है, दो अवस्थाओं को लेते हुए हमने काम करा, पहला है एंजेलिक स्टेट और दूसरा पीसफुल स्टेट। अलग अलग रीजन्स में एक्टिवेशन देखने के लिए कोशिश ये की गई कि 64 चैनल्स रिकॉर्डिंग को एक आधारभूत मान के किस तरह के चेंजेस हो रहे हैं उनको असेस किया जाए। तो पहला रीजन जो इंसुला रीजन था, पहले भी जो उसमें मैंने लिखा हुआ था, इंसुला का जो काम है, इंसुला फंक्शन करता है प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस के लिए। जो हम कहते हैं हम यहीं पर रहे, पहले यहीं पर बिल्कुल एट द मोमेंट ऑफ टाइम रहे, उस समय के लिए काम करता है। दूसरा सेंसेशन ऑफ इंटरनल स्टेट्स, हमें अपने अंदर की मानसिक स्थिति क्या है, अंदर की शारीरिक स्थिति क्या है उसका आभास होता रहे, उसके सेंसेशंस के लिए भी इंसुला काम करता है और साथ में इमोशन रेगुलेशन के लिए भी काम करता है। इमोशन रेगुलेशन माने कि अपने भावों पर नियंत्रण रखना और अपने भावों को सुचारू रूप से चलने देना, जहां पर आवश्यकता है वहां अपने भावों को प्रदर्शित करना, जहां आवश्यकता नहीं है अपने भावों को ब्लॉक करके रखना। सुपीरियर टेम्पोरल गायरस, इंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स जो कि अलर्टिंग में इंपॉर्टेंट है, जब भी कोई भी किसी भी प्रकार की अवेयरनेस की स्टेट में जिस समय आप हमें एक सजग रूप से रहना पड़ता है, जैसे एक सिपाही है, सिपाही को बॉर्डर पर बैठकर एक सजग मानसिक स्थिति का आभास देना पड़ता है ताकि किसी भी समय अगर कोई खतरा उसको महसूस हो तो वो उसको जल्दी से जल्दी जज कर पाए, उसको ग्रेस्प कर पाए और उसके लिए एक्शन ले पाए। दूसरा इन्फीरियर पैराइटल लोबियल जो बहुत महत्वपूर्ण ब्रेन रीजन है और इसमें हमें सबसे ज्यादा एक्टिवेशन मिले, जो कि अटेंशन डिसएंगेजमेंट का काम करता है और डिसएंगेजमेंट ऑफ थॉट कंटेंट। जैसे कि हम मानते हैं कि जैसे जैसे राजयोगी स्थिति को हम प्राप्त करते जाते हैं तो अलग अलग तरह के विचार हमारे मन से, सांसारिक विचार मन से दूर होते जाते हैं और बार बार उन सांसारिक विचारों की तरफ मन हमें लेके जाता है और फिर भी हम उसे दूर होने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रोसेस में जो सबसे ज्यादा एक्टिव रीजन होता है वो होता है इन्फीरियर पैराइटल लोबियल IPL। साथ में ये सेल्फ अवेयरनेस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, सेल्फ अवेयरनेस का भी काम करता है। और कुछ कुछ रीजन्स हैं जिसमें हमें मिलेगा ये कंट्रोल। जिन्होंने मेडिटेशन नहीं किया है उनका जब हमने स्टडी करके ब्रेन पार्ट्स में देखा तो ये अलग अलग रीजन्स एक्टिवेटेड थे, क्योंकि इनमें रीजन्स ज्यादा एक्टिवेटेड थे बजाय कि लॉन्ग टर्म मेडिटेटर्स के। उसका कारण ये कि जिस समय इनको रेस्ट कंडीशन में रखा गया उसमें रेस्ट कंडीशन में ये मेडिटेट नहीं कर रहे थे, उस समय अलग अलग विचार प्रवाह इनके मस्तिष्क में हो रहा था। तो एक अलग नेटवर्क हम बात करते हैं जिसकी DMN डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। जब हम कुछ भी काम नहीं कर रहे होते, किसी भी सेंसरी ऑर्गन से अगर हम सेंसेशन नहीं ले रहे होते तो हमारे मन में अपने आप कुछ विचार चलते हैं, कुछ संकल्प आते हैं, बहुत सारे संकल्प आते रहते हैं। तो उन संकल्पों का आना और उन संकल्पों का कम होना, इसको केवल एक पिक्चर से आपको दिखाऊंगा। जैसे इस समय आप देख रहे हैं बहुत सारे ब्रेन रीजन्स इसमें एक्टिव दिखाई पड़ रहे हैं अलग अलग रंगों से, अलग अलग कलर से, और यहां पर कुछ एकाध रीजन है जो एक्टिवेटेड दिखाई पड़ रहे हैं लॉन्ग टर्म मेडिटेटर्स में। तो क्योंकि लॉन्ग टर्म मेडिटेटर्स में जिस समय अगर ध्यान करते हैं तो वो ध्यान के लिए जो रिस्पॉन्सिबल एरिया है वही केवल एक्टिवेटेड रहते हैं, बाकी सारे एरिया एक तरह से हाइबरनेटेड स्टेट में रहते हैं। तभी हम कहते हैं एक बहुत बड़ा मिथ जो हम मानते हैं, भ्रांति मानते हैं कि मेडिटेशन को हम कंसंट्रेशन मान के चलते हैं कि वी हैव टू कंसंट्रेट ऑन समथिंग, और जब हम कंसंट्रेट करते हैं तो हम एनर्जी लूज करते हैं, हम एक तरह से ऊर्जा का प्रवाह वातावरण में छोड़ते हैं अपने अंदर से, जबकि जब हम मेडिटेट करते हैं तब हम एनर्जी ग्रैब करते हैं। अब ग्रैब करने का मतलब हम कहीं से एनर्जी ले रहे हैं ऐसा नहीं, हम जहां जहां से एनर्जी लूज हो सकती है उस सारे दरवाजों और खिड़कियों को मन के हम बंद कर देते हैं। तो दैट्स हाउ वी टैकल द सिचुएशन ऑफ लूजिंग द एनर्जी। अलग अलग डिफरेंट राजयोग स्टेट्स में जो हमें रिजल्ट्स मिले, पहला एंजेलिक स्टेट में जो मैं बता ही चुका हूं, सुपीरियर पैराइटल लोब्यूल एंगुलर गायरस, एंगुलर गायरस भी एक बहुत महत्वपूर्ण एरिया है और जो कि जैसे बताया आपको आईपीएल इंफीरियर पैराइटल लोब्यूल का ही एक हिस्सा होता है और सेल्फ अवेयरनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर प्री क्यूनियस जो कि खुशी का अनुभव कराता है, ऐसे हिस्से भी एंजेलिक स्टेट में हमें मिले और पीसफुल स्टेट में भी कुछ कुछ रिजल्ट हमें सेम मिले, बट फिर भी सुपीरियर फ्रंटल गायरस, पोस्ट सेंट्रल गायरस और इंफीरियर पैराइटल लोब्यूल ये भी एक अच्छे तरह से एक्टिवेटेड हमें मिले। तो अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि दोनों स्टेट्स को, एंजेलिक को और पीसफुल स्टेट को, एक तरह से उनके सिग्नेचर क्या है, सिग्नेचर स्टेट्स क्या है, उनको डिपिक्ट किया जाए और उनको बताया जाए कि इसमें इस तरह का फिजियोलॉजिकल पैटर्न चेंज होते हैं। कुछ पब्लिकेशंस जो इन पिछले एक दो सालों में हुए, 2014 में सिस्कोन एम्स की कॉन्फ्रेंस में एक पोस्टर प्रेजेंट किया गया हमारी लैब के द्वारा और जिसमें ये लोरेटा एक्टिवेशन जो थे ब्रेन के 14 चैनल के उनको प्रदर्शित किया गया, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था इसको। एक रजनीकांत भाई हैं अपने जो डिमहेंस से रिसर्च कर रहे हैं राजयोगा पर, उनका ईजी एफएमआरआई साथ में कंबाइन करके एक स्टडी करा गया। अभी तक हम क्या करते थे, हम या तो ईजी पर काम करते थे या एफएमआरआई पर काम करते थे। रजनीकांत भाई ने ईजी और एफएमआरआई को मिलाकर जो काम किया मेडिटेशन में वो अपने आप में बिल्कुल अनूठा था। पहली बार पूरे विश्व में शायद इस तरह का काम पहली बार हुआ था और राजयोगा पर तो बिल्कुल ही अनूठा प्रयास था। इस रिसर्च को उन्होंने 37th एनुअल मीटिंग ऑफ अमेरिकन सोसाइटी ऑफ न्यूरो इमेजिंग फ्लोरिडा में प्रेजेंट किया और उसके बाद ये जर्नल ऑफ न्यूरो इमेजिंग में पब्लिशन के लिए भेजा गया जो कि बहुत अच्छे इम्पैक्ट फैक्टर में पब्लिश हुआ और साथ में ये स्कैन करके एक अमेरिकन जर्नल है जो कि बहुत प्रतिष्ठित जर्नल है जिसका इम्पैक्ट फैक्टर 5.9 है उसके लिए भी इसको भेजा गया। तो ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि थी पिछले कुछ सालों में राजयोगा के ऊपर। अजय भाई जो है हमारे निमेंस में दूसरे भाई हैं जिन्होंने एक पोस्टर प्रेजेंट किया निमेंस में ही इंडियन एकेडमी ऑफ न्यूरोसाइंस में और 2014 में इसको बेस्ट पोस्टर अवार्ड मिला था उस समय पर। तो ये भी एक बहुत हर्ष का विषय था उस समय। एक रिसर्च जो डीआरडीओ की तरफ से किया गया राजयोगा के अफेक्टिव और कॉग्निटिव फंक्शंस पर क्या इफेक्ट था मस्तिष्क पर, उसको लेकर जो रिसर्च पब्लिश करी गई वो भी एक अच्छे इंटरनेशनल जर्नल ऑफ हेल्थ साइंस और रिसर्च में पब्लिश करी गई डॉक्टर अरुणिमा गुप्ता और निशी मिश्रा के द्वारा। डीआईपीआर एक संस्था है, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च, उनके द्वारा ये रिसर्च कंडक्ट करी गई थी। डीआरडीओ का एक कोलेबोरेशन प्रोजेक्ट था जिसमें इस रिसर्च को लेके चले गए। इसमें हार्ट रेट से लेके अलग अलग इमोशन प्रोसेस में क्या क्या चेंजेस हुए और साथ में विजुअल प्रोसेसिंग में क्या क्या चेंजेस हुए उसको दर्शाया गया था। अब जब हम बात करते हैं हमारे रिसर्च लैब ऑब्जेक्टिव्स की, स्पार्क लैब ऑब्जेक्टिव्स की, क्या क्या चीजों पर हम रिसर्च करना चाह रहे हैं और किन किन चीजों पर हम रिसर्च करेंगे, तो इसमें से कुछ चीजों पर हम काम कर रहे हैं और कुछ चीजों पर काम करने के लिए प्रयासरत हैं। साइकोफिजियोलॉजिकल स्टेट्स ऑफ राजयोगा मेडिटेशन, राजयोगा की अलग अलग स्टेट्स को साइकोलॉजी और फिजियोलॉजी दोनों को कंबाइन करके जो हम टर्म बोलते हैं साइकोफिजियोलॉजिकल स्टेट्स, तो साइकोफिजियोलॉजिकली उनको स्टेट्स को वैलिडेट करना, उनमें अलग अलग स्थितियों में क्या क्या परिवर्तन है, जैसे मैंने आपको बताया शांति स्वरूप अवस्था में और एंजेलिक स्टेट में उनमें क्या क्या चेंजेस हैं, उन सारी चेंजेस को अलग अलग चेंजेस को जज करना ताकि हम ये बता पाएं कि एंजेलिक स्टेट में ये ब्रेन पार्ट्स एक्टिव होते हैं तो एंजेलिक स्टेट अगर आप करेंगे तो एंजेलिक स्टेट का महत्व किस तरह की इमोशनल स्टेट में या किस तरह के फिजियोलॉजिकल स्टेट में करने से फायदा हो सकता है, ऐसा आम जनमानस को पहुंचाना। दूसरा वैलिडेशन ऑफ स्टेट ऑफ राजयोगा मेडिटेशन ताकि हम ये बता पाएं कि राजयोगा की किसी भी अवस्था में अगर हम ईजी लेते हैं तो ईजी या एफएमआरआई करते हैं तो उसको लेके हम एक सिग्नेचर बता पाए कि ये सारे ब्रेन रीजन अगर एक्टिवेटेड है तो ये राजयोगा का एक स्टेट है। या दूसरा स्टेट है या कोई दूसरा तीसरा स्टेट है, डिफरेंट इमोशनल स्टेट परसीव ड्यूरिंग मेडिटेशन, अलग अलग तरह के ध्यान में अलग अलग तरह की जो डिफरेंट इमोशनल स्टेट्स होती हैं, कई बार हमें क्रोध आता है, कई बार हमें बहुत ज्यादा प्रसन्नता का अनुभव होता है, कई बार दया का अनुभव होता है, तो अलग अलग क्या क्या इमोशंस हमें मिल रहे हैं उस स्टेट्स में, उनको जज करना और उनके बेसिस पे उनको उनको एस्टेब्लिश करना कि क्या क्या चीजें, क्या किस तरह के भाव हमें परसीव हुए थे। चौथा, पर्सनैलिटी अप्रोप्रिएशन ऑफ राजयोगा मेडिटेशन। कई बार हम बोलते हैं कि राजयोगा करना लाभप्रद रहता है, पर किस तरह का राजयोगा करना, किस स्टेट में राजयोगा करना ज्यादा लाभप्रद रहता है, उसको लोगों की पर्सनैलिटीज के अकॉर्डिंग, पर्सनैलिटी के हिसाब से उसको बताना। दूसरा जो मेजर ऑब्जेक्टिव है, इफेक्ट ऑफ मेडिटेशन ऑन इमोशनल हेल्थ, कॉग्निटिव हेल्थ, साइकोलॉजिकल हेल्थ, फिजियोलॉजिकल हेल्थ और सोशल हेल्थ। अपने स्वयं के इमोशनल स्टेट में क्या चेंजेस हम ला सकते हैं, उन चेंजेस को मेडिटेशन की हेल्प से लाना और उसको सिद्ध करना साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से। कॉग्निटिव हेल्थ में क्या चेंजेस ला सकते हैं, हम परफॉर्मेंस अपना कैसे बढ़ा सकते हैं अपने अपने स्थूल क्षेत्र में, जिस भी क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं। साइकोलॉजिकल हेल्थ में और फिजियोलॉजिकल हेल्थ में क्या चेंजेस हैं, उन चेंजेस को असेस करना। साथ ही सोशल हेल्थ में क्या चेंजेस, हम अगर एक समाज का एक हिस्सा है तो समाज को हमसे क्या मिल रहा है, बाहरी समाज को हमसे क्या मिल रहा है, तो समाज में क्या चेंजेस आ रहे हैं। कई लोगों ने इस पर काम किया, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन के जो महर्षि महेश योगी हैं उनके नाम से एक महर्षि इफेक्ट एक टर्म दिया जाता है, ट्रेडमार्क ऐसा माना जाता है, जिस समय एक निश्चित समय काल के लिए उन्होंने ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन करवाया यूएस के एक शहर में, उस शहर में क्राइम रेट 40-50% के बीच में रिड्यूस हुआ और बाकी और बहुत सारी चीजें जो पॉजिटिव साइड है, पॉजिटिव ग्रोथ है, वो इंक्रीज हुई थी। तो क्या हम राजयोगा की हेल्प से, राजयोगा करा के एक हम इस तरह का परिवर्तन ला सकते हैं क्या समाज में, तो उसको जज करना। और बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव के, लॉन्ग टर्म मेडिटेटर्स, शॉर्ट टर्म मेडिटेशन के कितनी ड्यूरेशन हम करें ताकि हमें इस तरह का लाभ प्राप्त हो, तो उनको अलग अलग चीजों को वैलिडेट करना। और थ्रेशोल्ड ऑफ एक्टिवेशन ऑफ कॉग्निटिव ब्रेन ड्यू टू मेडिटेशन, उसको भी जज करना। अब कई सारे ऐसे ऑब्जेक्टिव हैं जिनपे आप लोग भी काम कर सकते हैं, स्पार्क के कोलेब्रेशन में लेके और बाकी जिस भी रिसर्च इंस्टीट्यूट से आप लोग कोलेबरेट करते हैं या कहीं भी आसपास में आपके अगर सेंटर के आसपास कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, तो मेडिसिन में आप काम कर सकते हैं, फिजिक्स में काम कर सकते हैं, किस किस तरह से काम कर सकते हैं वो कुछ ऑब्जेक्टिव बना के मैंने रखे हैं। जैसे सपोज रिहेबिलिटेशन डोमेन है, मेंटली चैलेंज किड्स पर, स्पेशली एबल्ड किड पर, एडीएचडी और एडीडी जो सफर कर रहे हैं वो बच्चों पर, ऑटिस्टिक चिल्ड्रंस पर राजयोगा का क्या इफेक्ट हो सकता है, इस पर हम लोग भी एक काम कर रहे हैं। एडीडी और एडीएचडी चिल्ड्रंस पर एक छोटा सा काम किया गया और जो अलग अलग तरह के हीलिंग प्रैक्टिसेस करते हैं, उन हीलिंग प्रैक्टिसेस का क्या फर्क, क्या इफेक्ट होता है इन छोटे बच्चों पर, क्योंकि डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स जो छोटे बच्चों में हो जाते हैं उसको जल्दी से अगर निजात नहीं दिलाया गया तो एक बहुत बिगड़ी हुई शेप वो लेते हैं। मेडिटेशन और योगिक लाइफस्टाइल के साथ क्या फ्यूचर वर्क हमारे रहे, इस तरह के रिसर्च ऑब्जेक्टिव, एकेडमिक रिसर्च और सोशल ऑब्जेक्टिव के साथ हम काम कर रहे हैं। पहला रिसर्च, जैसे हमने कहा तो रिसर्च मेडिटेशन के साथ क्या रिसर्च और योगिक लाइफस्टाइल के साथ क्या रिसर्च कर सकते हैं। मेडिटेशन के साथ साइकोलॉजी, जेनेटिक्स और साइकोलॉजी जेनेटिक्स के साथ हम क्या रिसर्च कर सकते हैं, साइकोलॉजी में कॉग्निटिव एनहांसमेंट, किस तरह का परफॉर्मेंस एनहांसमेंट हम कर सकते हैं मेडिटेशन की हेल्प से, उसको असेस करना, उसके लिए एक रिसर्च प्रोजेक्ट लिखना, बनाना और फंड लेना, इस तरह के काम। क्लिनिकल सेटिंग्स में हम क्या चेंजेस ला सकते हैं मेडिसिन में, स्ट्रेस रिडक्शन अमंग मेडिकल स्टूडेंट्स, बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, बल्कि क्योंकि सबसे आपने देखा होगा मेडिकल स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा चश्मा लगाते हैं और चश्मा लगाने के साथ ही बहुत सारे स्ट्रेसर्स, धूम्रपान से लेके अल्कोहल कंजम्पशन भी सबसे ज्यादा उन लोगों में मिलता है। इसका मेजर रीजन जो है वो कारण यही है कि उनपे पढ़ाई के कारण इतना ज्यादा स्ट्रेस रहता है, उस स्ट्रेस को क्या हम रिड्यूस कर सकते हैं राजयोगा की हेल्प से, तो अपने सेंटर से कोलैबोरेट करके अलग अलग मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में राजयोगा कैंप कराना या फिर राजयोगा कैंप कराने के साथ साथ ये भी असेस करना कि उससे परिवर्तन क्या है, चेंज क्या है, सोसाइटी में चेंज क्या आया है, उन स्टूडेंट्स में क्या चेंजेस आए हैं, कॉलेज में क्या चेंजेस आए हैं, उनकी परफॉर्मेंस में क्या चेंजेस आए हैं, इस चीज को जज करना। और अलग अलग मेंटल डिसऑर्डर्स में, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स में, कार्डियोवेस्कुलर डिसऑर्डर्स में, या ब्लड प्रेशर, बीपी, शुगर, किस तरह के जो है, उन सारे डिसऑर्डर्स में मेडिटेशन का क्या इफेक्ट हुआ है। ट्यूमर कैंसर्स में भी, कैंसर रोकना तो एक अलग चीज है, बट कम से कम कैंसर के दर्द को कम किया जा सके राजयोगा की हेल्प से, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। तो जैसे मैंने वही चारों चीज डिस्कस करी, स्पिरिचुअल, मेंटल, फिजिकल और सोशल हेल्थ के द्वारा। दूसरा एक डोमेन हम परफॉर्मेंस एनहेंसमेंट का ले सकते हैं। जैसे मैं काम कर रहा हूँ राजयोगा को एक मॉडल के तौर पर, ट्रेनिंग मॉडल के तौर पर एस्टेब्लिश करने के लिए डिफेंस में, ताकि हमारे सैनिक जो हैं वो राजयोगा करें और राजयोगा करके अपने इमोशनल स्टेट को और अपने फिजियोलॉजिकल स्टेट को कंट्रोल कर पाए, उसको सुचारू रूप से चला पाए। कई बार ऐसा देखा गया है और बहुत आम एक फिनोमेना माना जाता है, जब आप एक्सट्रीम कंडीशंस में रहते हैं तो एक्सट्रीम कंडीशन में रहकर जब आप उनके आदि हो जाते हैं और उसके बाद जब वापस आप आते हैं नॉर्मल स्टेट में या कि अपने घर वापस लौटते हैं, तो भी आपको ऐसा अनुभव लगता है कि यहाँ भी वॉयलेंस होनी चाहिए। कई बार ऐसा सैनिकों को अनुभव होता है, इसी वजह से कई जो हम नेगेटिव न्यूज सुनते हैं या देखते हैं कई बार पेपरों में कि सैनिक ने किसी और आमजन को गोली मार दी या झगड़ा कर लिया, इस तरह की जो भी सारी चीजें होती हैं वो एक स्ट्रेस के कारण होती हैं। सो उस स्ट्रेस को, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस जो हम बोलते हैं, उसको हम रिड्यूस कर पाए और साथ ही कॉग्निटिव एनहेंसमेंट कर पाए, यानी कि जो भी परफॉर्मेंस एरिया है जहां पे उनको रेगुलरली परफॉर्म करना है वहां पर उनका परफॉर्मेंस अच्छा हो पाए। डिफेंस में हम काम कर सकते हैं, स्पोर्ट्स से जुड़े हुए जो लोग, जो सेंटर्स जिनके किसी भी स्पोर्ट्स सेंटर के साथ कोलैबोरेट हैं, किसी भी स्पोर्ट्स अथॉरिटीज के साथ, या स्पोर्ट्स स्कूल्स, छोटे छोटे स्पोर्ट्स स्कूल्स हैं जहां पे बच्चों को कोई भी किसी भी तरह का स्पोर्ट्स सिखाते हैं, वहां पर मेडिटेशन का उपयोग करके, राजयोगा का उपयोग करके किस तरह से परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हैं उसके ऊपर काम कर रहे हैं। एग्रीकल्चर, डेयरी में योगिक फार्मिंग, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस का क्रॉप पर क्या इफेक्ट हो रहा है। अभी जैसे हम देखते हैं बारिश आने से या ओला आने से जिस फसल खराब हो जाती है, वो फसल खराब होने के बाद जो किसान की मेहनत है तीन महीने, चार महीने, वो बर्बाद होती है। तो क्या योगिक खेती के द्वारा हम अपने फसल के चक्र को भी चेंज कर सकते हैं, क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है? मेरा ऐसा मानना है। तो क्या हम कर सकते हैं, उसके लिए भी प्रयास करना, पेस्टिसाइड्स को मिनिमाइज करना बिल्कुल, और योगिक खेती की हेल्प से पेस्टिसाइड को हटाना, और हमें नेचर के साथ एक को क्रिएशन, एक हार्मनी में डेवलप करना, इको विलेज मॉडल्स पे एस्टेब्लिश करना, फूड साइंस पे काम कर सकते हैं। जैसे फूड हैबिट्स, हमारे योगिक लाइफस्टाइल के जो फूड हैबिट्स हैं वो किस तरह से हमारे मानस पर इफेक्ट डालती हैं, अलग अलग तरह के जो न्यूट्रिएंट्स हैं, अभिमंत्रित फूड जो होता है, अब जब भी हम भोजन करते हैं तो भोजन में दृष्टि डालते हैं, तो दृष्टि डाल के भोजन में, भोजन के न्यूट्रिएंट्स में क्या इफेक्ट होता है, तो उनको क्वांटिफाई करना, केमिकली बायोलॉजिकली उनको क्वांटिफाई करना कि क्या क्या इसमें परिवर्तन हुए, इस तरह के कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट्स हम चला सकते हैं। एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट में भी हम काम कर सकते हैं, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, जैसे राजयोगा एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन दे रहा है, उस तरह की एजुकेशन को और जगह और अलग अलग इंस्टीट्यूट में प्रोवाइड करना और उससे क्या इफेक्ट हुआ है उसको जज करना। स्किल डेवलपमेंट लेवल पे भी हम काम कर सकते हैं, इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप पे, एथिकल और कम्युनिटी वेलफेयर पे। जब हम इकोनॉमिक्स की और मैनेजमेंट की भी बात करते हैं वहां पर भी हम काम कर सकते हैं। स्पिरिचुअल कैपिटल रिसर्च जो एक टर्म दिया जाता है कि होप, इमोशन इंटेलिजेंस, सेल्फ एफिकेसी, ऑप्टिमिज्म, इन सब का एक ऑर्गेनाइजेशन में, जो भी भाई हमारे जिनका कोई भी एक बिजनेस रन करते होंगे, ऑर्गेनाइजेशन रन करते होंगे, वहां पर अगर हम एम्प्लॉयज को राजयोगा की ट्रेनिंग देते हैं तो उन पर क्या इफेक्ट होता है, उनकी परफॉर्मेंस में क्या इफेक्ट होता है और एक पूरे ऑर्गेनाइजेशन आउटपुट में क्या इफेक्ट होता है वो हम देख सकते हैं। इन्वायरमेंटल साइंस में हम देख सकते हैं, इन्वायरमेंटल साइंस में किस तरह से पॉल्यूशन मैनेज हम कर सकते हैं, क्या हम इसकी कोशिश कर सकते हैं, लोगों को अवेयर करना, लोगों को सबसे बड़ी बात एथिक्स के लिए अवेयर करना कि वो जो भी गंदगी फैलाते हैं या पॉल्यूशन को बढ़ाने में कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे वो सहयोग दे रहे हैं, उसको उसके लिए अवेयर करना और अवेयर करने के साथ साथ उनके अंदर एक ये एक विचार पैदा करना कि जो भी सारी चीजें हैं, जो भी नेचर है या जो भी बाबा का क्रिएशन है, उन सारे क्रिएशंस को एक हार्मनी के साथ अपने साथ लेके चलें और उसको डिस्ट्रॉय करने के बजाय उसको बार बार सिंचित करने का उसको प्रयोग करें। तो रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन का भी एक एरिया है जिसपे ब्रह्मकुमारी सबसे ज्यादा काम कर ही रहे हैं। वन इंडिया प्रोजेक्ट, सोलर इंडिया जो प्रोजेक्ट है वो, या उसके अलावा बाकी और सोलर इक्विपमेंट जो हम किचन में यूज कर रहे हैं बाकी सब जगह पर, तो पूरा एक तरह से सेल्फ सस्टेनेबल सॉल्यूशंस क्रिएट करना। तो क्या ये हम अपने अपने सेंटर्स पे या सेंटर से रिलेट करते हुए किसी और ऑर्गेनाइजेशंस में या रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के साथ कोलेबरेट करके क्या हम वो बाकी आसपास के गांव में इस पे काम कर सकते हैं, उस पे देखना, इको फ्रेंडली स्ट्रक्चर्स और इको विलेज मॉडल्स पे काम करना। ये एक छोटा सा एक रोड मैप तैयार किया था जिसमें कई लोग हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अलग अलग तरह के लोग, लाइफ साइंस से रिलेट करते हों वो या सोशल साइंस से हो या फिर मेटाफिजिक्स से हो। लाइफ साइंस के लोग कॉग्निटिव एनहांसमेंट के लिए, जैसे मैंने बताया, डिफेंस और स्पोर्ट्स परस्पेक्टिव के लिए काम कर सकते हैं, मॉलिकुलर स्टडी कर सकते हैं क्या क्या चेंजेस हुए। अभी एक शायद नेक्स्ट टू नेक्स्ट सेशन में एक मानसी बहन है वो जेनेटिक्स पर काम कर रही हैं और जेनेटिक लेवल पर क्या चेंजेस हुए मेडिटेशन की हेल्प से और क्या चेंजेस हम असेस कर सकते हैं उसके बारे में बताएंगी, तो इसको भी एक स्टडी कर सकते हैं। साइकोलॉजिकल वेलबींग में क्या चेंज होते हैं हमारे स्वयं के और हमारी सोसाइटी के, चेंज सोसाइटी में क्या क्या चेंजेस होते हैं उस तरह को चीजों को असेस करना। सोशल साइंस में साइकोसोशल वेलबींग में काम कर सकते हैं, इमोशनल स्टेबिलिटी में क्या क्या चेंज हुए मेडिटेशन की हेल्प से वो देख सकते हैं, स्ट्रेस रिडक्शन में काम कर सकते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूवमेंट पे काम कर सकते हैं, सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट हम दे रहे हैं उस पर काम कर सकते हैं। और सोसाइटी पर इम्पैक्ट में भी तीन चार चीजें अलग अलग मॉडल से हम लोग काम कर सकते हैं, इनर और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पे काम कर सकते हैं, वैल्यू एजुकेशन पे काम कर सकते हैं, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल में कुछ काम कर सकते हैं, CSR मॉडल में कुछ काम कर सकते हैं। तो ये बस एक सोच डेवलप करने के लिए कि क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं और आइडिया आप सब लोग अपने हिसाब से सक्षम है, सब लोग आइडिया बना सकते हैं और एक प्रोजेक्ट की हेल्प से भी बना सकते हैं और साथ में एक सेंटर के अपने स्वयं के लेवल पे भी एक चीज कुछ ही शुरू कर सकते हैं। मेटाफिजिक्स में कॉन्शियसनेस रिलेटेड रिसर्च, कॉन्शियसनेस में क्या इफेक्ट हो रहा है मेडिटेशन का, किस लेवल तक हम कॉन्शियस हो पा रहे हैं, किस स्टेज तक हम पहुंच पा रहे हैं, क्या क्या चीजें हो रही हैं उसका एक देखना, और साथ में स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रांसमिशन इनटू मैटर। कभी हम कई बार बोलते हैं, जब भी हम कई योग करते हैं किसी और व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए जो कि बीमार है, तो क्या ऐसा ट्रांसफर कैसे हो रहा है इसके बारे में रिसर्च करना, इसके बारे में सोचना। एक मेंटल हेल्थ सर्वे को प्रपोज करना चाह रहे हैं हम, जिससे कि एक ह्यूज डेटाबेस बन सके मेडिटेटर्स का, जिसको होलिस्टिकली हम यूटिलाइज कर पाए, उनमें क्या क्या अलग 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 रीजन्स में अलग अलग तरह के अलग अलग एरिया के लोगों में क्या डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, क्या उनका वर्क प्रोफाइल है उसका क्या चेंजेस हो, वर्क प्रोफाइल की वजह से उनमें क्या डिसऑर्डर्स होते हैं, तो उसको एक असेस करना बड़े लेवल पे एनालिसिस करके बिग डेटा को, और डिफरेंट काइंड ऑफ मेडिटेशन इंटरवेंशन इफ दे कैन बी प्रोवाइडेड थ्रू नॉलेज ऑफ बाबा एंड राजयोगा। सो उस तरह से उनको इंटरवेंशन प्रोवाइड करना ताकि स्ट्रेस रिडक्शन से लेके बाकी और मेंटल डिसऑर्डर्स को भी दूर करा जा सके और उसके लिए स्ट्रेटेजी बनाई जा सके। तो ये कुछ प्रेजेंटेशन था। ओम शांति।